नमस्कार साथियों, हिंदी में 12वीं कक्षा के लिए आज का पाठ है कविता कहानी नाटक की रचना। सबसे पहले कविता के संबंध में जानते हैं, कविता क्या है। कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोगत भाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। कविता का जन्म भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा सकता है। पारंपरिक लोड़ियों, मांगलिक गीतों, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोक गीतों और तुकबंदी में कविता के स्वर मुखरित होते हैं। वाचिक परंपरा से जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। कविता के मूल में संवेदना है। यह संवेदना संपूर्ण दृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस की आनंद की अनुभूति करा देने वाली वाणी काव्य है। भामह का कथन है, कविता शब्द और अर्थ का उचित मेल है। आचार्य शुक्ल ने कविता के संबंध में कहा है, कविता जीवन की अनुभूति है। महादेवी वर्मा का कहना है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। प्रसाद कहते हैं, सत्य की अनुभूति ही कविता है। कविता का सीधा संबंध हृदय से होता है। कविता लेखन के आवश्यक तत्व या उपकरण। पहला है शब्द। कविता लेखन का पहला तत्व या उपकरण शब्द है। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। अंग्रेजी भाषा के कवि W.H. Auden ने कहा कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी कविता लेखन से पहले शब्दों से खेलना सीखें, उनके अर्थ की परतों को खोलें, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। शब्दों से जुड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। दूसरा है बिंब। बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। कविता लिखते समय बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। बिंब या चित्र का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में दृश्य और श्रव्य बिंब की संभावना तलाश करनी चाहिए। तीसरा है छंद। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। अतः कविता लिखने से पूर्व छंद की बुनियादी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा है परिवेश। कविता के उपयुक्त सभी तत्व परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। कविता की भाषा संरचना, बिंब, छंद सब परिवेश के इर्द गिर्द घूमते हैं। पांचवा है भाव। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी तत्व भाव से भी परिचालित होते हैं। कवि की व्यक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। अब कहानी के संबंध में जानते हैं। मनुष्य स्वभाव से कथा कहानी सुनने में रुचि रखता है। इसी प्रवृत्ति का साहित्यिक रूप आजकल कहानी के नाम से प्रचलित है। पहले इसे गल्प अथवा आख्यायिका भी कहा जाता था, परंतु अब साहित्य शास्त्र में इसे कहानी ही कहा जाता है। कहानी इसके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि जिस संक्षिप्त रचना में कोई कथा कही गई हो वह कहानी कहलाती है। कथा तो उपन्यास में भी होता है, परंतु वहां उसका स्वरूप विस्तृत एवं अनेक उपकथाओं तथा सह कथाओं से युक्त होता है। हिंदी के अमर कथा शिल्पी मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के बारे में कहा है, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने कहा है, आधुनिक कहानी साहित्य का एक विकसित कलात्मक स्वरूप है। इसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति के सहारे कम से कम पात्रों अथवा चरित्रों के द्वारा कम से कम घटनाओं और प्रसंगों की सहायता से मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य अथवा प्रभाव की सृष्टि करता है। कहानी के प्रमुख तत्व। पहला है कथानक। कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। सरल शब्दों में कहानी की रचना को कथानक कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि उसके अभाव में किसी कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जा सकता है। कहानी का कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कहानीकार एक कल्पना का विकास करते हुए परिवेश, पात्र और समस्या को आकार देता है। इस प्रकार वह एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोरी कल्पना ना होकर संभावित हो तथा लेखक के उद्देश्य से मिलती हो। दूसरा है द्वंद्व। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व कहानी को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं या अंतर्द्वंद्व के कारण उत्पन्न होता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय आकार से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं की जितना स्पष्ट झलक रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। तीसरा है देश, काल और वातावरण। प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और वातावरण होता है। कहानी में वास्तविकता का पुट लाने के लिए देश, काल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। कहानी का चौथा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। पात्रों का अध्ययन करना कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में होगी। पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए पात्रों के गुणों का बखान कहानीकार द्वारा तथा दूसरे पात्रों के संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। पांचवा तत्व है संवाद। कहानी के पात्रों के द्वारा किए गए उनके विचारों की अभिव्यक्ति को संवाद या कथोपकथन कहते हैं। कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है। संवाद ही कहानी तथा पात्र को स्थापित एवं विकसित करने के आगे कहें तो कहानी की गति को आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उन्हें वह संवादों के माध्यम से सामने लाता है। अगला तत्व है चरमोत्कर्ष। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, तब उसे कहानी का चरमोत्कर्ष या चरम स्थिति कहते हैं। कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। कहानी का चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे। पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं।
अन्य तत्व है भाषा शैली। कहानीकार के द्वारा कहानी के प्रस्तुतीकरण के ढंग को उसकी भाषा शैली कहा जाता है। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। अतः कहानी की भाषा सरल, सहज तथा प्रभावमयी होनी चाहिए। अंतिम तत्व है उद्देश्य। प्रत्येक कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। कहानी की रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो सकती, अतः उद्देश्य भी कहानी का एक अनिवार्य तत्व है।
अब नई कहानी के संबंध में जानते हैं। 1950 ईस्वी के आसपास हिंदी कहानियों में भी असामाजिकता, अनास्था, काम कुंठाएं, घुटन, संत्रास, अकेलापन, बेसहारापन, अस्तित्ववादी विचार, विशेषतः क्षणवाद, जीवन के प्रति वितृष्णा आदि की भावनाएं स्पष्टतः परिलक्षित होने लगी। इन्हीं विशेषताओं के कारण ऐसी कहानियों को नई कहानी कहते हैं। ऐसी कहानी में प्रायः क्लाइमेक्स या चरम बिंदु का आग्रह नहीं होता, क्योंकि ऐसी कहानियों में विशेष मनःस्थिति के निरूपण पर बल होता है। नई कहानी की विशेषता चारित्रिक असंगति है। ऐसी कहानियों में सस्पेंस का अभाव रहता है। इनमें अंतर्द्वंद्वों का सायास चित्रण नहीं होता। सांकेतिकता, बिंब विधान तथा प्रतीकात्मकता इनमें होती है। इनमें कथा तत्व नगण्य सा होता है। इनमें मुख्यतः मध्यवर्गीय शहरी जीवन के कलुषित, अस्वस्थ एवं कुंठाग्रस्त रूप का उद्घाटन मिलता है। इनमें आंचलिकता का भी आग्रह दिखाई पड़ता है। हिंदी के नए कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अमरकांत, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, मन्नू भंडारी, राजकमल चौधरी, अमृत राय, रघुवीर सहाय, अजीत कुमार, श्रीकांत वर्मा, मधुकर सिंह, मिथिलेश्वर आदि प्रमुख हैं। अब नाटक के संबंध में जानते हैं। नाटक क्या है? नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। नट शब्द का अर्थ है अभिनय, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। इसे रूपक भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक के मुख्य अंग, पहला है समय का बंधन। नाटक का प्रथम अंग समय का बंधन है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटक का विषय भूतकाल हो या भविष्यकाल, इन दोनों ही स्थितियों में वर्तमान काल में संयोजित होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक समय में एक स्थान विशेष पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता को हम कभी भी पढ़ते तथा सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से पढ़ना या सुनना शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक के तीन अंक होते हैं, उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। दूसरा तत्व है या अंग है शब्द। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग शब्द है। नाटक में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। नाटक के प्रमुख तत्वों में अन्य है कथ्य या कथानक। नाटक के लिए उसका कथ्य जरूरी होता है। नाटक में किसी कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के अंदर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी व अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें,
ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर की ओर हो। दूसरा है संवाद। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम उसके संवाद है। संवाद ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। अन्य तत्व है भाषा। भाषा नाटक का प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। नाटक वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक होना चाहिए। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे गए शब्दों से ज्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा नहीं गया हो। चरित्र। नाटक को सशक्त बनाने में चरित्र का विशेष योगदान होता है। अतः नाटक लिखते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि नाटक के पात्र व उनके चरित्र सपाट व सतही ना होकर क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाली हो। रंगमंचीयता। नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व रंगमंचीयता है। नाटक रंगमंच के लिए ही लिखे जाते हैं। वही नाटक सफल माना जाता है जिसका मंचन किया जा सके। रंगमंच नाटक की वास्तविक कसौटी होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।